मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आपको एक अंश पढ़कर सुना रहा हूं। यह अंश दैनिक भास्कर अखबार में छपा था और इसे लिखने वाले हैं ज्ञान वत्सल स्वामी। मुझे यह अंश बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगा और इस लेख में उन्होंने ढेर सारे डायमेंशंस कवर किए हैं। भाषा भी बड़ी अच्छी है, तो मुझे लगा कि बिना किसी हस्तक्षेप के इसे ज्यों का त्यों मुझे आप तक पहुंचा देना चाहिए। डेफिनेटली आप इसे ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपके लिए बहुत सारे अच्छे रास्ते और झिलमिल सितारे दिखाई देंगे। तो अब मैं शुरू करता हूं। फैमिली वैल्यू को समझने के लिए हमें परिवार को समझना होगा। एक है संयुक्त परिवार, जहां तीन पीढ़ियां साथ रहती हैं। दादा दादी के बीच बच्चों को शिक्षण के साथ संस्कार मिलते हैं। दूसरा न्यूक्लियर फैमिली, जहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी माता पिता अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं या अपने काम में व्यस्त होते हैं और बीच में न्यूट्रॉन फंसा रहता है। तीसरे तरह का परिवार है वायर्ड फैमिली, जहां परिवार का हर सदस्य किसी न किसी गैजेट के साथ वायर्ड है, उसके साथ उलझा हुआ है, गैजेट को ज्यादा समय देते हैं। आज लोगों को देश दुनिया की सारी जानकारी है, लेकिन अपने बच्चों के दोस्तों के बारे में नहीं। आज लोग खाना खाने बैठते हैं तो एक हाथ में चम्मच होती है और दूसरे हाथ में मोबाइल। सैकड़ों किलोमीटर दूर से फोन करने वाला व्यक्ति आपके बगल में बैठे अपनों से ज्यादा जरूरी है क्या? आपके जीवन में कौन ज्यादा जरूरी है, परिवार के लोग या दूसरे व्यक्ति? कुमार मंगलम बिड़ला और उनकी पत्नी नीरजा बिड़ला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बिड़ला हाउस में एक परंपरा है कि रात को 8 बजे हर कोई अपना फोन जमा कर देता है। कुमार मंगलम खुद अपना फोन अपनी मां के पास जमा कर देते हैं। रात 8 से 8:45 तक डिनर टाइम होता है, उसके बाद 9:15 तक परिवार के बीच बातचीत का समय होता है और 9:15 के बाद सबको अपने अपने फोन वापस मिल जाते हैं ताकि किसी को अगर कोई काम हो तो वह कर ले। हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? आप अलग कमरे में मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे अलग कमरे में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, वे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और अपने अंतर मन में क्या डाल रहे हैं वो आपको पता तक नहीं होता। फिर आप शिकायत करते हैं कि बच्चे बिगड़ गए। बच्चों में सुधार लाने के लिए पहले बड़ों को खुद में सुधार करना होगा। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स ने एक बार अपने एक पारिवारिक मित्र निक बिल्टन और उनके परिवार को फैमिली डिनर के लिए बुलाया। निक ने स्टीव जॉब्स से पूछा कि आपके बच्चे कौन सा आईफोन इस्तेमाल करते हैं। उस समय स्टीव की बेटी की उम्र 13-14 साल और बेटी की उम्र 11-12 रही होगी। स्टीव ने कहा कि आप खुद ही उनसे पूछ लें। दोनों बच्चे सिर नीचा करके खाना खा रहे थे, बच्चे शायद बात नहीं सुन पाए। निक ने फिर से स्टीव से यही सवाल पूछा। इस बार स्टीव ने जवाब दिया कि आज तक उनके बच्चों ने आईफोन या आईपैड को छुआ तक नहीं है। निक ने कहा कि यह सुनकर मेरे हाथ से चम्मच लगभग छूट ही गई थी। निक ने इस प्रसंग का जिक्र स्टीव जॉब्स की जीवनी में किया है। स्टीव ने आगे जवाब दिया कि मैंने और पत्नी ने मिलकर बच्चों से बात की कि आपके दोस्तों के सर्किल में सबके पास आईफोन होगा, अगर आपको भी आईफोन चाहिए तो यह रहा, और उन्होंने सामने निकाल कर रख दिया। लेकिन चूंकि मैंने बनाया है इसलिए मुझे इसकी ताकत और कमजोरी दोनों पता है। जब तक आप परिपक्व उम्र तक नहीं आते, इस स्मार्टफोन से आपकी पढ़ाई पर असर पड़ सकता है, चरित्र पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और भविष्य भी बिगड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें आपको फोन नहीं देना, लेकिन हम चाहते हैं कि जब आप 17-18 की परिपक्व उम्र में आए तभी आपको फोन मिले। दोनों बच्चे समझ गए और उन्होंने मैच्योर एज तक आईफोन यूज नहीं किया। इन गैजेट्स के बारे में परिवार में अनुशासन लाना जरूरी है। फैमिली टाइम में व्यवधान डालने वाली चीजें दूर करते हैं। फैमिली वैल्यूज के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। हम साथ में खाना खाते हैं या साथ में टीवी देखते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन एक समर्पित समय देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये छोटा सा अंश मैंने पढ़कर सुनाया है। आप देखिए कि इसमें जो दो उदाहरण दिए गए हैं वो किन लोगों के हैं। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और दूसरा तो एक तरीके से एप्पल का सर्वे सर्वा है, जिसने ये स्मार्टफोन बनाया, सब कुछ दिया, लेकिन वे इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, वो किस तरह से परिवार को महत्व दे रहे हैं, परिवार के मूल्यों का संरक्षण कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। और क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली आपको लगेगा कि करना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब ऐसा करेंगे भी। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।